नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज। बिजली मंत्री आरके सिंह ने गर्मी में बिजली की मांग पूरी करने के लिए कई बैठकें की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गाजा में इसराइल के हमले में 7 मानवीय सहायता कर्मियों के मारे जाने की निंदा की। ताइवान में शक्तिशाली भूकंप, जापान ने सुनामी की चेतावनी जारी की और आईपीएल क्रिकेट में कल बेंगलुरु में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 28 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड के रुद्रपुर और राजस्थान में कोटपुतली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रुद्रपुर में श्री मोदी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए एनडीए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कोटपुतली में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आम चुनाव नहीं है बल्कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान का चुनाव है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव भारत को विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। उधर राज्य में कांग्रेस और अन्य दल भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पाली और जोधपुर में रैलियां की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाताओं के बीच जाने और उन्हें विकसित भारत एजेंडा के बारे में जागरूक करने को कहा है। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि भाजपा एक तरफ विकसित भारत को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने श्री शाह से संकट के समय राज्य का दौरा नहीं करने पर सवाल उठाया। इस बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने INDIA गठबंधन की पार्टियों के साथ बेंगलुरु में बैठक की। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद राहुल गांधी आज वायनाड से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वे कालपेटा में चुनावी रैली करेंगे। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और कई बड़े नेता इस रैली में हिस्सा लेंगे। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एनी राजा भी नामांकन पत्र भरेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुंदरन भी कल नामांकन दाखिल करेंगे। इस सीट पर LDF, UDF और NDA उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। केरल में इस महीने की 26 तारीख को मतदान होगा। कल नामांकन का आखिरी दिन है। पर्चों की जांच 5 अप्रैल को होगी और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण में ही मतदान होगा। राज्य के 83,37,000 से अधिक मतदाता 55 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का निर्णय करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर सभी का विशेष रूप से ध्यान है।
हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से इस बार 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत, कांग्रेस के वीरेंद्र रावत और बसपा के जमील अहमद सहित 14 प्रत्याशियों ने चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। इस सीट पर 7 उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें खानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमेश कुमार भी शामिल हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, जिनमें से 7 नामांकन अपूर्ण पाए गए थे और इन्हें रद्द कर दिया गया। इस लोकसभा सीट से कुल 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इस वर्ष 20,35,726 मतदाता चुनाव में उम्मीदवारों का भाग तय करेंगे। सुगम मतदान के लिए इस संसदीय क्षेत्र में 2,318 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस सीट से चुनाव जीता था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अम्बरीश कुमार को 2,58,729 मतों से पराजित किया था। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
जम्मू कश्मीर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल ने कल सीमावर्ती राजौरी जिले में संसदीय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। हमारी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों और इसके प्रबंध के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जिले के निर्वाचन दल की स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्होंने चुनाव की तैयारियों के प्रमुख पहलुओं के बारे में भी जानकारी ली। बैठक में मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने की स्थिति पर भी चर्चा हुई। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से निपटने के लिए मिथ वर्सेस रियलिटी नाम से एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसे निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट।
इस प्लेटफॉर्म के जरिए सूचनाओं की पुष्टि, भ्रामक सूचनाओं और मिथकों के प्रसार पर रोक लगाने तथा आम चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्लेटफॉर्म पर चुनाव से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे मिथकों, महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालों तथा सभी संबंधित पक्षों के लिए विभिन्न वर्गों के अंतर्गत संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इस प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं को नियमित आधार पर अपडेट किया जाएगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
सरकार गर्मियों में बिजली की मांग पूरा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने इस बारे में कई बैठकें की और गर्मियों में जीरो लोड शेडिंग यानी शून्य कटौती सुनिश्चित करने पर बल दिया। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने अधिकतम बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी ताप बिजली संयंत्रों की क्षमता स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन कंपनियों के साथ भी बैठक की। मौसम विभाग ने इस वर्ष गर्मियों में कुछ स्थानों को छोड़कर पूरे देश में सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसे देखते हुए बिजली की मांग भी पहले की अपेक्षा अधिक रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें से एक पर 29 लाख तथा दूसरे पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस कार्रवाई के लिए पुलिसकर्मियों की सराहना की है।
मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू होते ही प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल जबलपुर और शहडोल में कई सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विगत 10 वर्ष सेवा, सुशासन और विकास के रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता स्मृति ईरानी आज खजुराहो में और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 6 अप्रैल को सिंगरौली और सीधी में प्रचार करेंगे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस
दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2024 के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। संचार मंत्रालय ने कहा है कि प्रसारण उभरता हुआ क्षेत्र है, इसमें देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने की विशाल संभावनाएं मौजूद हैं। एक रिपोर्ट।
परामर्श पत्र में भारत को वैश्विक कंटेंट हब बनाने के उद्देश्य से प्रसारण क्षेत्र के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। पत्र में सार्वजनिक प्रसारण सेवा को बेहतर बनाने, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विभिन्न खंडों के मुद्दों, पायरेसी से निपटने और कंटेंट सामग्री की सुरक्षा पर भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यह परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट www.try.gov.in पर अपलोड किया गया है। लोग 30 अप्रैल तक इस पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति बनाने के लिए ट्राई से सुझाव देने का अनुरोध किया था। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गजा में इसराइली हमले में 7 मानवीय सहायता कर्मियों के मारे जाने की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसराइल पर इन कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराए जाने का आरोप लगाया। कल के हमले में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के नागरिकों के मारे जाने के बाद इसराइल ने स्वतंत्र जांच कराए जाने का वायदा किया है। मारे गए सहायता कर्मियों में 3 ब्रिटेन के और 1-1 पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फलस्तीन और अमरीकी कनाडाई नागरिक हैं। इसराइल के राष्ट्रपति आइजेक हर्जोग ने इस घटना पर दुख प्रकट किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कल इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की और पारदर्शी जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसराइल को मानवीय सहायता पहुंचाने पर पाबंदियां खत्म करनी चाहिए और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
shocked and saddened to hear the reported deaths of aid workers in Gaza. We're urgently working to confirm all the details, but my thoughts right now with their friends and family. They're doing fantastic work bringing alleviation to the suffering that many are experiencing in Gaza. They should be praised and commended for what they're doing. They need to be allowed to do that work unhindered, and it's incumbent on Israel to make sure that they can do that, and we're asking Israel to investigate what happened urgently, because clearly there are questions that need to be answered.
ताइवान के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में आज तेज भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र प्रशांत महासागर में हुआलियन काउंटी से 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व लगभग 16 किलोमीटर गहराई पर था। भूकंप के झटकों के कारण दक्षिणी जापान में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार जापान के योनागुनी द्वीप पर 30 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी दर्ज की गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत अरिंदम बागची ने कल जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडोनम गैब्रियसिस से मुलाकात की। उन्होंने पारंपरिक चिकित्सा और डिजिटल स्वास्थ्य सहित वैश्विक स्वास्थ्य में भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में कल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 28 रन से हरा दिया। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच विशाखापट्टनम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद विमलेंदु। रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली अखबारों की बड़ी खबर है। पंजाब केसरी की सुर्खी है भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा और तेज। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर आर पार, आने वाले 5 वर्ष अभूतपूर्व काम और बड़े फैसलों के होंगे। दिल्ली शराब घोटाले पर जनसत्ता का शीर्षक है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, प्रवर्तन निदेशालय ने नहीं किया विरोध। उधर दैनिक जागरण का कहना है संजय सिंह की जमानत आदेश नजीर नहीं। अवैध रेत खनन से जुड़े अन्य मामलों के बारे में पत्र लिखता है प्रवर्तन गठबंधन की मजबूरी, नेतृत्व जरूरी। दैनिक जागरण का कहना है संपत्तियों के मुद्रीकरण से राजमार्ग मंत्रालय को मिले 40,354 करोड़ रुपए, वर्ष 2023-24 में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास पर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लक्ष्य से अधिक 100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का किया निर्माण। नवभारत टाइम्स लिखता है हेल्थ एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्दों के दुरुपयोग पर दी चेतावनी, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने ई कॉमर्स को आगाह किया। अमर उजाला चिंताजनक शीर्षक से लिखता है देश में सूख रही नदियां, 13 में नहीं बचा पानी। केंद्रीय जल आयोग के जारी आंकड़ों से सामने आई स्थिति, 11 राज्यों के 2,86,000 गांवों पर संकट। निदेशालय के सामने पेश नहीं होने पर तमिलनाडु के 5 जिलाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, शीर्ष न्यायालय ने 25 अप्रैल को पेश होने का दिया अंतिम मौका। अमर उजाला की खबर है भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद के योग गुरु रामदेव और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्णन ने नया हलफनामा, माफी दिखावा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज। बिजली मंत्री आरके सिंह ने गर्मी में बिजली की मांग पूरी करने के लिए कई बैठकें की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गजा में इसराइल के हमले में 7 मानवीय सहायता कर्मियों के मारे जाने की निंदा की। ताइवान में शक्तिशाली भूकंप, जापान ने सुनामी की चेतावनी जारी की। और आईपीएल क्रिकेट में कल बेंगलुरु में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 28 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।